قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے
کہ دل کو کیسی باتی ہے کھانے پینے کا ان کے ہم خیال رکھتے ہیں ان کو نہ ہو تکلیف یہ دھیان رکھتے ہیں
قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے قربانی کے
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے بچوں اور کشت مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم آ گئے ہیں ہمارے اپنے ہم سب کا پروگرام بچوں کی بکری پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا پروگرام بھی مختلف سیگمنٹس میں ہونے جا رہا ہے جی ہاں پالتو جانور بھی دیکھ رہے ہیں ایکٹیویٹی بھی ہوگی جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملنا ہے اور بہت کچھ دیکھنے کو بھی ملنا ہے تو آئیے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا
ماشاءاللہ تو کس مدری چینل کے ناظرین تلاوت ہو چکی ہے تو اب ہم نے چلنا ہے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس میں بچے ایک ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہوں گے کون سے بچے ہیں کس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اور پھر آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کنکلوژن تو چلتے ہیں ان بچوں کے پاس
قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے
آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ایک عظیم ٹاپک ہے اور وہ ہمارے دین اسلام کا ایک رکن بھی ہے. یعنی آج ہم بات کریں گے حج کی.
سبحان اللہ, بہت ہی پیارا ٹاپک ہے. ہم حج کے ٹاپک پہ بات بھی کریں گے. الحمدللہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے, جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اسلام پانچ چیزوں پر قائم کیا گیا. اس کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, نماز قائم کرنا اور زکات دینا, حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا.
الحمدللہ دنیا بھر سے مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کے دوران مکہ مکرمہ اور میدان عرفات وغیرہ کے مقامات پر مخصوص عبادت کرتے ہیں, اور اسی کو حج کہا جاتا ہے.
حج کرنے والا حاجی کہلاتا ہے, اور بہت سارے حاجیوں کو حجاج کہا جاتا ہے. اور حج کے دوران حاجی لبیک کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں,
یعنی کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا
حج مسلمانوں کی یونٹی یعنی اتحاد کی علامت ہے. حج کے دوران لاکھوں مسلمانوں کا وہ ڈسپلن نظر آتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. اس کے علاوہ بقر عید کا چاند نظر آنے کے بعد حاجیوں کے علاوہ عام مسلمان بال نہیں کاٹتے, اور حاجی بھی حج کے دوران اپنے بال وغیرہ نہیں کاٹتے. اسی طرح عام صاحب حیثیت مسلمان قربانی کرتے ہیں, تو حاجی بھی حج کی قربانی کرتے ہیں.
تو اس طرح دنیا بھر کے مسلمان, چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں یا افریقہ کے, ہند کے رہنے والے ہوں یا پاکستان کے رہنے والے ہوں, سبھی یونٹی یعنی اتحاد کا زبردست مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں.
یہ عظیم عبادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے لیے اپنے مال کو اور اپنی انرجی کو قربان کریں, جس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کی زبردست مثال قائم کی.
اور جیسے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام اور اہل اسلام کے لیے قربانیاں دی, اور یہ حج کے ارکان ہمیں انہی پیارے بندوں کی قربانیوں اور ہمیں انہی کی پیاری اداؤں کی یاد دلاتے ہیں.
قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے.
تو پیارے پیارے بچوں, اگر آج کی اس گفتگو کا, اس ڈسکشن کا کنکلوژن کیا جائے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج ایک ایسا اسلامی فریضہ ہے جو مسلمانوں کی یونٹی کو شو کرتا ہے. یہ حج کی عبادت ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی قربانی کی یاد دلاتی ہے, اور ہم سے بھی قربانی دینے کا مطالبہ کرتی ہے. تو اگر ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اللہ پاک کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنا ہوگا, اور بہت سی قربانیاں دینی ہوں گی. جی ہاں میرے پیارے بچوں, یہ جو حج ہے پھر قربانی ہے, یہ بھی ایک عظیم ہمارے تہوار ہیں. تو ہمیں اللہ عزوجل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں قربانی دینے والا بنا. جی ہاں میرے پیارے پیارے بچوں, ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہمیں بہت سی قربانیاں بھی دینی ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے, مالک کریم ہم سب کو قربانی دینے والا بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں اور کس مرضی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں بچے موجود ہیں, تو اب ہم نے چلنا ہے سوال و جواب کی طرف, جس میں ہم بچوں سے سوالات کریں گے, بچے جوابات دیں گے, کیونکہ اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے. تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جواب دیجئے.
قربانی کے دن آئے تیری عید آئی ہے.
تو پیارے پیارے بچوں اور کس مدری چینل کے ناظرین, اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے سوال اور جواب کا. جی ہاں, بچوں سے سوالات پوچھیں گے اور بچے ہمیں جوابات دیں گے, آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے. اچھا بچوں, یہ بتائیے کہ بکرے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں گے, چلیں مائک دیں.
بکرے میں حصے نہیں ہوتے, پورا ایک حصہ ہوتا ہے.
وہ پورا ایک حصہ ہوتا ہے, تو ان کا جواب درست ہے. یہ بتائیں کہ بکرا عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ چلیں, اتنے ساروں کو پتا ہے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں.
جی نہیں, بکرا عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے.
جی نہیں, بکرا عید کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ممنوع ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ان کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے, کیا عید کے چوتھے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو قربانی کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں گے, بتائیں.
جی نہیں, قربانی کے صرف 3 دن ہیں.
وہ کون کون سے ہیں؟
10, 11, 12. اور 13 ذی الحجہ کو قربانی کرنا ناجائز ہے.
جی ہاں, قربانی کے بس 3 دن ہیں, 10, 11, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کو قربانی کرنا ناجائز ہے. تو 3 دن میں ہی قربانی کرنی چاہیے. تو ان کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ عز و جل. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ آپ دے دیں, آخر والے ان کو مائک دیں.
سورہ بقرہ.
جی ہاں, سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. ان کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. یہ بتائیے کہ پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی ہے؟
پنجاب
یونیورسٹی پاکستان کی سب سے اولڈیسٹ یعنی پرانی یونیورسٹی ہے. ان کا جواب بھی درست ہے, ماشاء اللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کس مندری چینل کے ناظرین, آئیے چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے.
قربانی کے دن آئے عید آئی ہے.
تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اور آج ہم نے اس میں جو ہے بڑا پیارا واقعہ سننا ہے, اور یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے. اور اگر کہا جائے کہ یہ ایک انوکھی گائے کا واقعہ ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. یہ بڑا پیارا بڑا انوکھا واقعہ ہے. کل ہم نے سورہ بقرہ میں موجود ایک گائے کے بارے میں واقعہ سنا تھا جس میں ایک شخص نے اپنی گائے اللہ کی حفاظت میں چھوڑ دی تھی. اچھا بچوں, جب اس شخص کا بیٹا بڑا ہوا تو گائے اسے مل گئی تھی. تو آئیے آگے سنتے ہیں کہ ہوا کیا. پھر اس کی امی نے اس کو کہا کہ بیٹا, تم اس گائے کو بازار میں جا کر 3 دینار میں بیچ دو. کتنے دینار میں؟
3 دینار
میں بیچ دو. اچھا پیارے بچوں, اس وقت کی جو کرنسی تھی نا وہ دینار تھی. آج کے زمانے میں تو یہ کاغذ کے نوٹ وغیرہ چل رہے ہیں نا, پہلے زمانے میں تو سکے ہی ہوا کرتے تھے, کاغذ کی نوٹ تو ہوتی ہی نہیں تھی. تو پھر اس کی امی نے اس سے یہ بھی کہا کہ تم میرے بغیر مشورے کے یہ گائے کسی کو مت بیچنا. جب وہ لڑکا اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک خریدار آیا. بچوں آپ کو پتا ہے وہ اصل میں کون تھا؟ وہ اصل میں ایک فرشتہ تھا, مگر وہ انسان کے روپ میں تھا. اب بچوں لڑکے نے وہی کیا جو اس کی امی نے کہا تھا. اب اس خریدار نے کہا کہ میں تمہیں 3 دینار نہیں بلکہ 6 دینار دوں گا, لیکن تم اپنی امی سے بغیر مشورہ کیے مجھے یہ گائے بیچ دو. اب اس لڑکے نے کہا کہ تم اس گائے کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ دو, لیکن میں ہرگز ہرگز اپنی امی کے مشورے کے بغیر یہ گائے کو نہیں بیچوں گا. اب اس لڑکے نے یہ قبول نہیں کیا. جب واپس آیا تو اس نے اپنی امی کو ساری بات بتائی. جب اس لڑکے نے آ کے اپنی امی کو سارا واقعہ بیان کیا تو اس کی امی نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم 6 دینار میں بیچ دو, لیکن پھر بیچنے میں دوبارہ اپنی مرضی کی شرط لگا دی. آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا؟ تو چلیں آگے چلتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا پھر بچوں پھر پتا ہے کیا ہوا؟ وہ لڑکا دوبارہ بازار میں گیا اور وہ خریدار نے اس کو 6 کے بجائے 12 دینار کی آفر دی, لیکن اس نے پھر سے یہی کہا کہ تم اپنی امی سے بغیر مشورہ کیے مجھے گائے بھیج دو. اپنی امی کا نیک بیٹا, فرما بردار بیٹا, زیادہ پیسے ملنے کے باوجود بھی اپنی ماں کی بات کو نہ بھولا. اب پھر لڑکا پھر سے واپس گھر پر آیا اور اس نے اپنی امی کو 12 دینار والی بات بھی بتا دی. اب اس نیک لڑکے کی جو والدہ تھی نا امی, वो भी बहुत समझदार थी, वो समझ गई कि ये खरीदार जो है ना, ये कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है जो मेरे बेटे को आजमा रहा है। अब वालिदा ने अपने बेटे को कहा कि जाओ उस खरीदार से मशवरा करो कि ये गाय हम अभी बेचें या नहीं। अब जब लड़का बाजार गया और उस खरीदार से मशवरा किया तो खरीदार ने कहा कि अभी इसे ना बेचो, बाद में बनी इसराइल कौम के कुछ लोग इस गाय को खरीदने आएंगे तो तुम इसकी कीमत ये बताना कि इस गाय की खाल में सोना भर दिया जाए, यानी इस गाय की खाल में जो सोना भरा जाएगा ना उसकी मिकदार में तुम्हें सोना दिया जाए। तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर उस गाय को खरीद लेंगे। फिर पता है क्या हुआ, इस फरिश्ते ने जैसा बताया था ना वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों बाद बनी इसराइल की कौम में एक ऐसा वाकया पेश आया कि उसे हल करने के लिए हजरत मूसा अली सलातो सलाम के कहने के मुताबिक वैसी ही गाय दरकार थी जैसी उस नेक लड़के के पास थी। अब बनी इसराइल की कौम के लोग गाय को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस नेक लड़के के पास पहुंचे तो उस लड़के ने फरिश्ते के कहे के मुताबिक जो इसकी कीमत लगाई ना, वो गाय की खाल में जो सोने की मकदार होती है ना इतनी उसने डिमांड की, यानी गाय की खाल पर सोना की डिमांड की। उन लोगों ने उसको वो कीमत देकर वो गाय खरीद ली और इसी तरह से वो जो बेटा था ना फरमा बरदार था, अपनी अम्मी की हर बात मानता था, वो अमीर हो गया। इस वाक्य से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि जो कोई अच्छे अच्छे काम करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अपने अम्मी अब्बू की हर बात मानता है और उनकी हर बात को बजा लाता है और अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह पाक उसको बहुत कुछ अता फरमाता है। जिस तरह अब्बू की वफात के बाद अम्मी की खिदमत और अच्छे काम करने की वजह से उस नेक लड़के को दुनिया की सबसे यूनिक गाय मिली, उसकी खाल भर सोना भी उसे मिला और वो लड़का अमीर भी हो गया। प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम अपने अम्मी अब्बू की हर बात माने, उनकी किसी बात को इग्नोर ना करें, वो जो भी कहें हम उसे फौरन पूरा कर दें ताकि अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी नवाजे और आखिरत में भी हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। इस वाक्य से हमें ये भी सबक मिलता है कि जो कोई अपना माल या कुछ भी अल्लाह की हिफाजत में दे दे तो अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाता है और फिर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जब कभी आप कहीं जाएं तो अपने आप को, अपने घर वालों को, सबको अल्लाह की हिफाजत में दे दें और आपको जिस चीज के गुम होने का खतरा हो ना वो अल्लाह पाक की हिफाजत में दे दें और इसी तरह से बच्चों हमारी चीजें महफूज रहेंगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किस्मतरी चैनल के नाजरीन, आपने वाक्या सुना। अब हमने चलना है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मुकद्दस मकामात।
अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत इब्राहिम अली सलाम ने खजूरों की एक टोकरी, कुछ रोटी के टुकड़े और पानी देकर बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपने दूध पीते बेटे हजरत इस्माइल अली सलाम को एक ऐसे मैदान में छोड़ दिया जहाँ खाने पीने को कुछ न था। जब तक खजूरें और पानी रखा, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा इत्मीनान से गुजारा करती रही, मगर जब पानी खत्म हो गया तो आपको प्यास लगने लगी और हजरत इस्माइल अली सलाम ने भी रोना शुरू कर दिया था। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी तो इतनी फिक्र न हुई मगर अपने प्यारे से बेटे की बेचैनी देखी न गई। आप रज़ियल्लाहु अन्हा उठी और सफा पर चढ़ी कि कहीं शायद पानी मिल जाए, मगर पानी का तो नामो निशान ही नहीं था। आप वापस उतरी, दूसरी पहाड़ी यानी मरवा पर चढ़ी और पहाड़ चढ़ते हुए भी अपने बेटे को देखती रहती। जब पहाड़ी पर चढ़ते हुए हजरत इस्माइल अली सलाम नजर न आते तो आप तेज तेज यानी दौड़ कर चलने लगती और जब हजरत इस्माइल अली सलाम नजर आते तो आप आहिस्ता आहिस्ता चलती, लेकिन मरवा पहाड़ी पर भी कहीं पानी न मिला। इस तरह आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने सफा व मरवा के साथ चक्कर लगा लिए। आखिरी चक्कर में एक खतरनाक आवाज आई तो आप अपने बेटे के पास जल्दी से पहुंच गई और आपने देखा कि हजरत इस्माइल अली सलाम जो अभी एक प्यारे से बच्चे हैं वो अपनी एड़िया जमीन पर रगड़ रहे हैं जिससे मीठे पानी का चश्मा निकल गया। ये देखकर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हुई और इस चश्मे के गिर्द मिट्टी जमा करके फरमाने लगी, जमजम यानी ठहर ठहर, इसलिए इसका नाम आब जमजम हुआ। और पानी की तलाश में जो हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा दौड़ी थी, अल्लाह पाक ने उनकी याद को कयामत तक के लिए बाकी रखा कि हज उमरा करने वाले भी हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा की तरह इन पहाड़ियों पर सात चक्कर लगाते हैं।
प्यारे प्यारे बच्चों और किस मजरी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट था मुकद्दस मकामात। अब हमने चलना है एक और प्यारे सेगमेंट की तरफ, जिसमें बच्चे हमें कुछ सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है क्या करें और क्या ना करें।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज आपको बताऊंगा कि बकरे का ख्याल रखते वक्त हमें क्या क्या करना चाहिए।
और मैं आपको बताऊंगा कि बकरे का ख्याल रखते वक्त वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए।
बकरे को वॉक करवाते वक्त हल्के हल्के चलाना चाहिए।
जी, बकरे की रस्सी को गर्दन पर बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए, इससे बकरे को तकलीफ होती है।
हमें अपने बकरों को छांव में बांधना चाहिए।
बकरे की रस्सी बहुत छोटी ना रखी जाए कि उससे तकलीफ हो और वो सही से खराबी ना हो पाए और सही से खाना भी ना खा सके।
हमें अपने बकरे को साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे बकरा खूबसूरत भी लगता है और हेल्दी भी रहता है।
जी बच्चों, हमें बकरों के कानों को जोर से पकड़ना या मरोड़ना नहीं चाहिए।
बकरा जिस जगह पे बांधा जाए हमें उस जगह को साफ रखना चाहिए।
अक्सर बच्चे या बड़े अपने छोटे बहन भाइयों या अपने बच्चों को बकरों के बहुत ज्यादा करीब ले आते हैं। ऐसा हमें हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बकरा प्यारा जानवर तो है लेकिन ये चक्कर भी मार सकता है और चोट भी पहुंचा सकता है।
बकरे को किसी बड़े की मौजूदगी में सैर जरूर करानी चाहिए, इससे बकरा हेल्दी रहता है।
बकरों को किसी महफूज जगह पर ही सैर करवानी चाहिए, बजाय इसके कि आप रोड पर सैर करवाएं जहां गाड़ियों से एक्सीडेंट का खतरा हो।
हमें बकरे को खुली फजा में रखना चाहिए ताकि उन्हें फ्रेश एयर मिले।
जी, लेकिन ख्याल रहे कि बकरों को बारिश के सीजन में खुली फजा के बजाय किसी साफ और महफूज जगह पर रखा जाए, ताकि बकरा बीमार होने और भीगने वगैरह से बच जाए।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
बच्चों की आपने बात सुनी कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो अब इन बातों पर आपने अमल भी करना है। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और आइए सुनते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट डॉक्टर क्या कहते हैं। आज भी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं और बच्चे करेंगे कुछ सवालात और डॉक्टर साहब देंगे उनके जवाबात। जी हाँ, आज भी बच्चे एक टॉपिक तैयार करके लाए और टॉपिक है दुम्बा। तो आइए चलते हैं सवालात की जानिब और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब उन सवालात के जवाबात भी देंगे। जी, पहला सवाल कौन करेगा?
जी, मेरा से ये सवाल था कि दुम्बा कौन सा चारा सबसे शौक से खाता है?
दुम्बा जो है वो हरा घास खाता है, जिसके अंदर शौक से जो है वो जंतर है, लुसन है, बरसीम है। सबसे ज्यादा जो है वो जंतर और लुसन ज्यादा खाता है, शौक से चारा जो है हरा चारा वो खाता है।
जी, सेकंड क्वेश्चन,
क्या दुम्बे का ऊन काट लें तो दुम्बे को तकलीफ होगी?
नहीं, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। सर्दियों में जब जो बाल होते हैं उन्हें नहीं काटा जाता, गर्मियों में जो अलबत्ता ताकि गर्मी ना लगे उन्हें उनके बाल काटे जाते हैं और ऊन जिसको हम ऊन कहते हैं ऊन काटी जाती है।
जी, कटबंदी चैनल के नाज़रीन, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि दुम्बे का अगर ऊन काट लिया जाए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती। और हाँ, ये बात तो हो सकता है आपको पता हो या हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, तो मैं बताता हूँ कि दुम्बे के ऊन से हमारे स्वेटर और जो जैकेट वगैरह हम पहनते हैं वो दुम्बे के ऊन से बनाए जाते हैं। जी, अगला सवाल,
दुम्बे को कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं?
दुम्बे को एंट्रोटॉक्सिमिया है, पीपीआर है, पल्मोनरी नमोनिया है, फीवर है, डायरिया है, काफी सारी बीमारियां हैं जो उनमें पाई जाती है। जो मैंने बताई है वो सारी बीमारियां दुम्बे में पाई जाती है और इनकी बाकायदा एहतियाती तौर के ऊपर उनको वैक्सीन की जाती है ताकि वो बीमारियों से महफूज रहें।
अच्छा डॉक्टर साहब, जब दुम्बा बीमार हो उसको छींका है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए?
जी हाँ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि उसके प्रॉपर वो चेकअप करे और उसको देखे क्या आया, उसको क्या प्रॉब्लम है और उसी हिसाब से उसको चेक करने के बाद उसका इलाज मुआवजा किया जाए।
जी, अगला सवाल कौन पूछेगा?
दुम्बा हर वक्त टक्कर क्यों मारता है?
दुम्बा हर वक्त टक्कर नहीं मारता, जब भी उसको अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं या उसको कोई तकलीफ पहुंचाता है तो तब टक्कर मारता है या गुस्से की हालत में टक्कर मारता है।
जी जी, तो कृष्णवंदी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया, दुम्बे को तंग करेंगे तो ऐसी बात है वो टक्कर मारेगा। जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, वो चल रहे हैं उनको चलाएं, उनको खिलाएं पिलाएं, और उनको तंग नहीं करना चाहिए वरना फिर वो टक्कर मारेंगे। जी अगला सवाल,
क्या दुम्बे को घर में लगे हुए पौधे खिला सकते हैं?
जी हाँ खिला सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतनी चाहिए ना खिला जाए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जहरीले असरात होते हैं उनमें और उनका मैदा खराब हो सकता है जिससे 10-25 वगैरह लग सकते हैं। बेहतर और अच्छा यही है कि अगर आप जो बाजार में अगर आपको मिल रहे हैं जो उनकी बेहतर गिजा है वो आप उनको खिलाएं, जो ग्रीन ग्रास है, चारा है, लुसन है और जंतर है, ये खिलाएं आप।
जो उनका मखसूस खाना है
वो खिलाएं आप।
जज़ाकअल्लाह खैर।
क्या दुम्बे को साबुन से निला सकते हैं?
जी हाँ साबुन से भी निला सकते हैं आप, शैम्पू से भी निला सकते हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं है, अच्छे और बेहतर तरीके से उसको निलाएं।
अच्छा जैसे दुम्बे को निला सकते हैं तो बकरे को भी निला?
जी जी बिल्कुल, दुम्बा बकरा सबको निला सकते हैं, शैम्पू से भी साबुन से भी।
क्या दुम्बे को मेहंदी या ऑयल लगा सकते हैं?
मेहंदी तो लगाते ही हैं और ऑयल जो है वो सिर्फ सींगों पे लगाया जाता है, बाकी तो नहीं लगाते, मेहंदी लगा सकते हैं अलबत्ता।
डॉक्टर साहब मेरा से ये सवाल था कि बच्चों के लिए दुम्बे का गोश्त ज्यादा सेहतमंद होता है या फिर बकरे का?
बकरे का वैसे तो दोनों ही है लेकिन अच्छा जो है वो बकरे का भी है और दुम्बे का भी है, बकरे का बेहतर है, दुम्बे का थोड़ा सा गर्म होता है, इस तरह से दोनों ही बेहतर है।
तो गर्मी के मौसम में ज्यादा नहीं खाना चाहिए दुम्बे का?
जी
डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है, जब दुम्बा बीमार होता है तो मिशल उसको भी लगता है?
जी हाँ उसको इंजेक्शन भी लगता है, बीमारी की नोयत के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तो उसको पिलाने वाली दवाई से भी अगर वो बेहतर हो सकता है तो इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, अगर वो ज्यादा बीमार है तो उसको इंजेक्शन भी लगता है।
जी नाज़रीन देखा आपने कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी इंजेक्शन लगता है। जी नेक्स्ट सवाल,
दुम्बे सुस्त हो जाए तो क्या करना चाहिए?
उनको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए ताकि वो आगे देखे कि सुस्त होने की वजह क्या है, कुछ चारा नहीं खा रहा, उसको मोशन लगे हुए, बुखार है, क्या है, तो जानवर को जो है वो डॉक्टर को चेक कराना चाहिए ताकि उसको इलाज मुआवजा किया जाए।
जी डॉक्टर साहब बाजों का ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं बड़े मजे से दुम्बे की रस्सी खोलते हैं और दोस्तों को बोलते हैं कि अब तो मैं दुम्बे को घुमाऊंगा आज, और फिर दुम्बा चल के ही नहीं दे रहा होता।
उसकी बहुत सारी वजूहत है, मुसलसल जो आते हैं दुम्बे या बकरे वगैरह तो उनको बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, आराम के उनके अंदर खलल आता है, तो इस वजह से वो ज्यादा नहीं चल पाते, तो बेहतर है कि उसको जो दुम्बे या बकरे या जो भी जानवर लेकर आ रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा तंग ना किया जाए, उसको आराम करने दिया जाए।
जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन देखा आपने कि जिस तरह इंसानों को आराम की जरूरत होती है इसी तरह जानवरों को भी आराम की जरूरत होती है, तो हम जब जानवर लाएं तो उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, उसको वक्त पे खाना देना चाहिए और उसको आराम का वक्त भी देना चाहिए। जी नेक्स्ट,
क्या दुम्बे के बाल में कीड़े हो सकते हैं क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं?
जी हाँ बिल्कुल उनके बाल बड़े होते हैं, उन बड़े बालों में जो जुए हैं, चिचड़ियां हैं और जो मैगेट्स, लाइज, फ्लाइज, मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसमें छुपे हुए होते हैं और उसको बाकायदा तौर पे जो है वो चेक करना चाहिए, उनको शैम्पू से अच्छे एंटीसेप्टिक शैम्पू से उनको निलाना चाहिए ताकि वो जो कीड़े वगैरह हैं वो खत्म हो जाए, और उनको उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करानी चाहिए ताकि वो कीड़े उनमें मजीद ना पाए जाए।
जज़ाकअल्लाह।
तो कृष्ण मंदिर चैनल के नाज़रीन देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने हमें एहतियाती तदाबीर भी बताई और बच्चों के जो सवालात थे उनके जवाब भी दिए, उम्मीद आपने गौर से सुनेंगे। आखिर में मैं आपको सोशल मीडिया का लिंक देता चलूं कि आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे हमारा एक पेज है जिसका नाम है कृष्ण मंदिर चैनल, आप जाएं वहां पे हमारे प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं और पोएम्स वगैरह हमारी मदनी चैनल की टीम डालती रहती है तो आप उसको भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन इसी के साथ हमारे सेगमेंट डॉक्टर क्या कहते हैं इसका वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आइए अब चलते हैं शफीक भाई की जानिब जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
कुर्बानी के दिन आए कि ईद आई है।
जी प्यारे प्यारे बच्चों तो अब हमने देख रहे हैं अनोखे जानवर, क्योंकि ये सेगमेंट है अनोखे जानवर।
कुर्बानी के दिन आए कि ईद आई है।
ओहो प्यारे बच्चों ये कैसा यूनिक, इंटरेस्टिंग और खूबसूरत जानवर है, और आज हम आपको इसी अनोखे, हैरान कुन और खूबसूरत जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जिसको सुनने और देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। बच्चों ये जो आपके सामने छोटी सी मोटी सी डार्क ब्राउन कलर की प्यारी सी गाय है इसका नाम गुड़िया है। गांव के मालिक का कहना है कि इन्होंने इसका ये नाम इसकी खूबसूरती, इसके कलर, शॉर्ट हाइट और इसके हैवी वेट होने की वजह से रखा है। इस छोटी सी मोटी सी काऊ की हाइट तकरीबन 2 से 2.5 फीट है और यही छोटी हाइट इस काऊ को यूनिक और इंटरेस्टिंग बना रही है। बच्चों देखें इसकी गर्दन और इसके पेट पर कितनी कलरफुल और खूबसूरत झालर है। इसके मालिक ने इस काऊ के छोटे मगर मजबूत और ताकतवर पांव में झुनझुने भी पहनाए हुए हैं। प्यारे बच्चों, माशाल्लाह ये कैसी जबरदस्त सेहतमंद और एक्टिव काऊ है, जिसकी रस्सी पकड़कर घुमाने का लुत्फ भी अलग है। और देखें कैसे ये इधर से उधर भागती जा रही है, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये देखें इस काऊ को एक बच्चा कितने मजे और आराम से टहला रहा है। आपने देखा कि गुड़िया कैसी अनोखी और खूबसूरत जानवर है और इसका कितना ख्याल रखा जाता है। इसी तरह हमें चाहिए कि हम भी अपने घरों में लाए जाने वाले कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत करें, उनका भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि इन जानवरों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी भी है।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
प्यारे प्यारे बच्चों और किस मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
मुझे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, मुझे बहुत मारूंगा, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ।
बकरी मियां क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों?
नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
क्या, किसी को नहीं छोड़ूंगा?
सब तंग करते हैं मुझे, जो भी आता है मुझे हाथ लगाता है, मेरा सींग पकड़ लेता है, मेरे कान को हाथ लगाता है, कभी कभी तो मेरा कान पकड़ के मोड़ देता है और मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ होती है।
ओह ओ, ये बात है बकरे मियाँ, सॉरी, आप कूल डाउन हो जाओ, मैं सबको समझा दूंगा, आइंदा कोई ऐसा ना करे। चलो चलो, मैं आपके लिए ताज़ा चारा लेके आता हूँ, वो भी आपकी पसंद का।
क्या क्या कहा, मेरी पसंद का चारा और वो भी ताज़ा, फिर तो मजा आ जाएगा।
बकरे मियाँ, आज तक हम आपको तंग नहीं करेंगे और कुछ रखेंगे।
प्यारे बच्चों, बकरों को बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए, उनके कानों को नहीं मोड़ना चाहिए, बैठे हों तो उन्हें उठाना नहीं चाहिए, खा रहे हों तो तंग नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उनकी देखभाल करनी चाहिए।
कुर्बानी के दिन आए के ईद आई है।
तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आज हमारा 9th एपिसोड है और आज ये हमारा लास्ट एपिसोड भी है, 9th भी है और लास्ट भी है। अब बच्चों की बकराईद प्रोग्राम का ये आखिरी एपिसोड है, तो आपने सबसे पहले तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और आपने फीडबैक भी देना है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। हमने कोशिश की कि आपके लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकें और हमें अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने ये जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, आपको उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, बहुत कुछ समझने को भी मिला होगा, बहुत कुछ देखने को भी मिला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपने सिंपली ये काम करना है कि आपने अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इसको देखेंगे उतने ज्यादा लोग सीख सकेंगे। हमने आपको वो बातें बताई जो आपके बकरीद के दिनों में भी काम आएंगी और बकरीद के बाद भी काम आएंगी। तो किस्त मदनी चैनल देखते रहिए, ऐसे प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स किस्त मदनी चैनल लाता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने बच्चों की बकरीद का कोई भी एपिसोड मिस कर दिया हो, आप चाहें तो YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से और यहाँ मौजूद बच्चों की तरफ से एडवांस में
ईद मुबारक,
एडवांस में ईद मुबारक।
कुर्बानी के दिन